ओम शांति। अव्यक्तवाणी 16 जून 1969। बड़े से बड़ा त्याग अवगुणों का त्याग। तीसरा पॉइंट है, सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखावेंगे? कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में उनको मरजीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक से मरजीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं। अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झट झाटकू बना देना। बाबा कहते हैं, सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? सबसे बड़ी सेवा, बच्चे चेक करें, सबसे बड़ी सेवा है अपने में आना। अपने में आना, उसके बाद ही बाबा जो बोल रहा है वो सेवा होगी। पहली सेवा है सत्य स्वरूप में आना। जब तक बच्चे सत्य स्वरूप में नहीं आते, तब तक मायावी खेल, विकारों के खेल चलते रहेंगे, विकारों के बाल बच्चों के खेल चलते रहेंगे। जब तक सत्य स्वरूप में नहीं आते, इसलिए सबसे बड़ी सेवा जो है अपने में आना, पहले उसे कीजिए। इस दुनिया में तुम दूसरों की सेवा करने के लिए बाद में आए हो, पहले अपनी सेवा, स्वसेवा। दूसरों की उन्नति तभी हो पाएगी जब अपनी उन्नति कर चुके होंगे। इसलिए पहली सेवा है स्वयं की सेवा, स्वयं की उन्नति। बस सत्य स्वरूप में ही आना है कि हम एक ज्योति बिंदु स्वरूप सितारा आत्मा है, एनर्जी है और कुछ नहीं। उस सत्य स्वरूप में आना है, बाबा कहते हैं। पहले उसके लिए प्रयास करो कि तुम उसमें आ सको। देखिए, आप सभी जिस स्वरूप में रहकर सेवा करते हो, सामने वाले को भी उतनी ही उपलब्धि प्राप्ति हो पाती है। अगर विश्व सेवा करते समय आपका ध्यान, पद पोजीशन, बॉडी कॉन्शियसनेस कुछ है, आपका ध्यान इन सभी बातों में, तो फिर आप भटकेंगे और दूसरों को भी भटकाएंगे। देखिए, विश्व सेवा करते समय, कोई भी सेवा करते समय, सेवा विश्व सेवा ही होती है, तो कोई भी सेवा करते समय यह ध्यान रखना है कि हमारा कॉन्शियसनेस कौन सा है, हमारी स्थिति कौन सी है, हमारी अवस्था कौन सी है। आपको प्राप्ति वही होगी जो आपकी अवस्था होगी। इसलिए अवस्था का ध्यान देना, बाबा कहते हैं, अवस्था का ध्यान देना सेवा के समय। अवस्था बहुत आवश्यक है, जिसे कॉन्शियसनेस कहा जाता है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो अगर आप आत्मिक स्थिति में है सोल कॉन्शियसनेस में है तो आप आत्मा की सेवा कर पाएंगे। अगर देह अभिमान में है तो देह की सेवा होगी, भक्ति हो जाएगी, उसमें भी पद पोजीशन है, नाम रूप है, तो उनकी सेवा होगी। आत्माओं की सेवा नहीं कर पाओगे कभी। कभी कभी बच्चों के लिए होता है, दुनियावी रूप से बड़े लोग आते हैं, दुनियावी रूप से नाम मान शान धन के रूप से बड़े लोग आते हैं, तो आप बच्चे कोई कोई प्रभावित हो जाते हैं सेवा करने में, लगता है कि ये आए है तो आत्मा ना। अभी वो जो कोई बड़े हैं या छोटे हैं वो उनका पार्ट है इस जन्म का, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी होती नहीं है। पार्ट से प्रभावित नहीं होना किसी के, समझ की बात है, पार्ट से प्रभावित नहीं होना। बच्चों के लिए समझ है, क्या ब्रह्मा बाबा आदि से अमीर थे, आदि से नाम मान शान वाले थे बचपन से? समझ की बात है, बाप को गरीब निवास कहा जाता है, समझ है। ब्रह्मा बाप का जन्म भी तो गरीबी में रहा, इसका अर्थ क्या छिपा है? प्रभावित नहीं होना अमीरी से। बहुत से गरीब बच्चों में श्रेष्ठ बच्चे भी तुम अनुभव कर पाओगे। ऐसे नहीं कि अमीरी में नहीं होंगे, दोनों तरफ होंगे, बस बाबा बता रहा है कि प्रभावित नहीं होना। आत्मा आई है, कोई भी आए हैं, इस दुनिया के पदमपति भी आए हैं, लेकिन आत्मा आई है। आप आत्मा समझ के आत्मा के साथ व्यवहार करना, फिर आत्मा की सेवा होगी, वरना नाम मान शान की सेवा होगी, आत्मा की सेवा नहीं हो पाएगी, नाम मान शान की सेवा होगी। समझ की बात है, बाबा कहते हैं समझ कर चलिए। तो पहली सेवा है स्वयं की सेवा। क्या समझ कर करते हैं स्वयं की सेवा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम स्वयं को क्या समझ रहे हैं, क्या समझ कर खुद की सेवा कर रहे हैं, चेक कीजिए। आप जब मुरली पढ़ते हैं सुनते हैं, क्या समझ कर मुरली पढ़ते या सुनते हैं, चेक कीजिए। आत्मा समझ कर या नाम मान में रहकर, शान में रहकर, पद पोजीशन में रहकर मुरली सुनते हैं या पढ़ते हैं? यह कोई स्टूडेंट नहीं, यह कोई टीचर नहीं, वो बस एक पार्ट है। सभी आत्माएं एक समान हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं है, हर किसी का अपना पार्ट है। ड्रामा में तुम्हें श्रेष्ठ पार्ट मिला है, इसका मतलब तुम दूसरों के साथ कनिष्ठता से व्यवहार मत करना, वरना किसी दिन तुम उसकी जगह होंगे, वो तुम्हारी जगह होगा। व्यवहार में बदलाव मत करना। ब्रह्मा बाबा ने किया क्या, मम्मा ने किया क्या व्यवहार में बदलाव? कोई भी आए, विश्व की कोई भी आत्मा आए, व्यवहार समान होना चाहिए, बाप समान। कोई भी आए, ज्ञानी आए या अज्ञानी आए, कभी कभी हम किसी को अज्ञानी का टाइटल दे देते हैं और कहते कि ये अज्ञानी है, इनसे दूर रहो। एक समय पर तुम भी वो थे, तुम 36 से पहले ज्ञान में नहीं हो, 36 के बाद में ही ज्ञान में हो, ब्रह्मा बाबा के बाद में। इसलिए अपने को श्रेष्ठ समझने की गलती मत करना। जिस क्षण तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो, श्रेष्ठ समझने में समस्या नहीं है, पर जिस क्षण तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझकर दूसरों को कनिष्ठ समझते हो, तुम गिर जाते हो। तुमने अपने आप को ज्ञानी समझा, माया आई, योगी समझा, माया आई, धारणायुक्त सेवाधारी समझा, माया आई। मुबारक हो, गिरना निश्चित है, गिरना निश्चित है अभी तुम्हारा। बाबा कहते मैं भी नहीं बचा सकता। अहंकार में कभी नहीं आओ, इसलिए आत्मिक स्थिति में रहो। अभिमान ही करना है ना, तो आत्मा अभिमानी बनो। अहंकार को उस आत्मा अभिमान में कन्वर्ट करो, दूसरों को भी आत्मा देखो, स्वयं भी स्वयं की आत्मा समझकर सेवा करो। समझ है बच्चों के लिए? तो सबसे बड़ी से बड़ी सेवा कौन सी है? स्वयं को सत्य स्वरूप में लाना, यह सबसे बड़ी से बड़ी सेवा है। स्वयं को सत्य स्वरूप में लाना। जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखावेंगे? तीव्र पुरुषार्थ। कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में उनको मर जीवा बनाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ का सबूत। एक सेकंड में मर जीवा बनाना, अगर बने होंगे तो बना पाएंगे। अगर आप मर जीवा बने होंगे तो दूसरों को बना पाएंगे, मर जीवा नहीं होंगे तो दूसरों को नहीं बना पाएंगे। मर जीवा मना, जीव से मर गए, शरीर से मर गए, आत्मा में आ गए। मृत्यु के बाद जो अनुभूति होती है कि जैसे सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा चल रही हूँ, वही अनुभूति जीव में रहते हुए करना, मर जीवा, अशरीरी अवस्था, देहभान से न्यारे। अगर बने होंगे तो बना पाएंगे, वरना अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे, ध्यान रखना आप योगी हो, आप ज्ञानी हो, और कोई आपके सामने आते अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, तो आपके योग और ज्ञान के कारण, भले वो योग और ज्ञान भक्ति है इस समय, लेकिन भक्ति में भी तो शक्ति होती है, तो आपके पास वो शक्ति है ज्ञान और योग की। लेकिन किसी के सामने आप बॉडी कॉन्शियसनेस में खड़े हो, तो सामने वाले का बॉडी कॉन्शियसनेस आप बढ़ा दोगे। देखिए ये मार्ग ही ऐसा है, इस मार्ग को आपने चुना है, अगर पूरा चल पाए तो पुण्य होगा, वरना ड्रामा। ये मार्ग शक्ति देता है, अभी उस शक्ति से आप अकल्याण करेंगे या कल्याण करेंगे, दोनों में से एक होगा। किसी के भी सामने आप जिस स्वरूप में रहते हो उसको आप उस स्वरूप में लाते हो। अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस में खड़े हो तो सामने वाला और बॉडी कॉन्शियसनेस में जाएगा, निश्चित है। अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में खड़े हो और सामने वाले को आत्मा रूप में देख रहे हो, सामने वाला बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलेगा, आत्मिक स्थिति में आएगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि वो उसका पुरुषार्थ, पर बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलेगा, बॉडी कॉन्शियसनेस घटेगा, उसका कम हो जाएगा। समझ की बात है? इसलिए इस राह पर चलते आप 24 घंटे या तो पाप करते हो या पुण्य करते हो, इससे अलग कुछ नहीं होता। दुनियावी लोग छुटे हुए हैं, उनके पास कोई शक्ति नहीं है, पर आपके पास शक्ति है। उस शक्ति से या तो आप किसका नुकसान कर रहे हो या किसी का फायदा कर रहे हो, मर्जी आपकी है। राह आपने चुनी है, इसलिए आपको इस अवस्था में आना ही पड़ेगा, सोल कॉन्शियसनेस। और कोई उपाय नहीं है आपके पास, आत्माभिमानी बनने बिगर कोई उपाय नहीं है, कोई भी नहीं, वरना नुकसान हो जाएगा। तो मर जीवा बनो और फिर बनाओ, पहले बनो फिर बनाओ। अगर आप बने होंगे तो बना पाएंगे। तो एक सेकंड में उनको मर जीवा बनाना, अनुभूति कराना कि जैसे देह है नहीं। कैसे पता चलेगा कि एक सेकंड में मर जीवा बन गया सामने वाला? आपके खड़े रहते ही एक दृष्टि से, एक नजर से सामने वाला कल्याण की बातें कर रहा है, कल्याण के कर्म कर रहा है, माना मर जीवा बन गया, कल्याण की बातें करेगा, अच्छी बातें करेगा, सुख की बातें करेगा, स्वयं और दुनिया के कल्याण की बातें करेगा, माना मर जीवा बन गया, ये उसका प्रमाण है। आप चेक करो, आपके साथ संबंध संपर्क में कोई आते कौन सी बातें करता है, आप चेक करो। जैसी बातें करता है वैसे उसकी अवस्था है और वैसे तुम्हारी अवस्था है। तुम्हारी अवस्था से सामने वाले की अवस्था चलती है, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, योगी हो, समझ की बात है। कोई आपसे फोन पर संसारी बातें ही करता रहता है, दोष उसका नहीं, दोष आपका है, क्योंकि अभी भी आप संसारी हो, इसलिए सामने वाला आपसे संसारी बातें कर रहा है। आपसे अगर अध्यात्म की चार बातें कही जा रही है, माना जरूर आप आध्यात्मिक हो, समझ की बात है। दुनियावी साधु संन्यासी है, महात्माएं हैं, उनके सामने जाके क्या लोग संसारी बातें रखते हैं या उनसे आध्यात्मिक बातें सुनते हैं? चेक करो, क्या यहां वहां की कहानियां जाके उन्हें सुनाते हैं क्या लोग? उनसे कहानियां सुनते हैं जीवन बनाने की, जीवन को सुधारने की, जीवन को सुख शांतिमय बनाने की। तुम चेक करो अपने आप को, तुमसे कौन सी कहानियां सुनते हैं लोग, कौन सी चर्चा करते हैं वो लोग तुमसे, जो तुम्हारे संबंध संपर्क में आते हैं, तुम चेक करो। इससे तुम्हें तुम्हारी अवस्था पता चलेगी, तुम कितना आत्मिक स्थिति में हो, कितना कंबाइंड स्वरूप में हो पता चलेगा। कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में उनको मर जीवा बनाना, कहते हैं ना एक धक से मर जीवा बनना, जिसको झटकू कहते हैं, एक धक से तुम बने होंगे तो बना पाएंगे। तुम बनाने की कोशिश कभी नहीं करना किसी को, तुम बने होंगे तो अपने आप बना पाएंगे, बनाना नहीं पड़ता। वापिस सेवा स्वयं की है, एक झटके में स्वयं को झाटकू बनाना है, एक झटके में बलि, झाटकू माना एक झटके में बलि दे दिया, तड़पता हुआ नहीं छोड़ना है, शस्त्र उठाया और बलि हो गया, बलि चढ़ गया, इसको झाटकू कहते हैं। एक सेकंड में दर्द भी नहीं, समझ की बात है। किसी किसी मंदिर में करते हैं, एक सेकंड में गर्दन अलग हो जाती है, सिर अलग हो जाता है बलि चढ़ाए हुए चीज का। तो बाबा कहते ना, एक धक से मर जीवा बनना, जिसको झाटकू कहते, तुम बने हो क्या? अभी भी कुछ बचा के रखा है पीछे संसार। देखिए, जिसके बुद्धि में संसार है जरा भी, वो अध्यात्म को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा। अंश भी संसार है तो भी, अंशता भी, संसार असार है अभी इस समय, या तो बाप या फिर संसार, थोड़ा कुछ रख नहीं सकते। संसार 0.1% भी है ना बुद्धि में, फिर भी तुम संसारी ही कहलाए जाओगे। ध्यान देना इस बात पर, दुनिया में इतने साधु सन्यासी हैं, उन्हें सन्यासी कब कहा जाता है? जब संपूर्ण रीति परमार्थ को पकड़ा और संसार को छोड़ा, तब सन्यासी कहा गया। चेक कीजिए, उनके अंदर जरा भी संसार नहीं दिखेगा। वो कभी आपको उनका पुराना परिचय नहीं देंगे, न शरीर का नाम, न किस परिवार से है, न किस गांव से, कोई परिचय नहीं देंगे। संसार भूल चुके हैं, वो वापिस आए फिर भी परिवार वाले नहीं पहचान पाते कि ये वही सदस्य है हमारे परिवार का, क्या नहीं पहचान पाते। इतने संपूर्णता बन जाते हैं सन्यासी। तो बाबा कहते, मर जीवा बनना पड़ेगा, आधे आधे मत रहो, थोड़ा कुछ बैलेंस बुद्धि को मत रखो संसार में। कहते हैं ना, एक धक से मर जीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झट झाटकू बना देना, जिसके ऊपर दृष्टि पड़े। ये भी वही कर पाएंगे जो बने हैं, एक झटके में जो बने हैं ना, वही कर पाएंगे। जिन्हें बनने में समय लगा है, समझानी लेनी पड़ी, ज्ञान लेना पड़ा, वो नहीं कर पाएंगे। वो एक झटके में झाटकू नहीं बना पाएंगे जो खुद समझ कर बने। बाबा कहते नहीं, ये ज्ञान ही ऐसा है समर्पण का, एक झटके में समर्पण, काशी कलवट, विचार करके नहीं। जो सोच विचार करके काशी कलवट खाते हैं, प्राप्ति भी वैसी हो जाती, क्योंकि छलांग तो लगाई लेकिन सोच विचार करके, इसलिए शरीर के टुकड़े होने तक विचार चल रहे थे, तो उसे पूरा काशी कलवट नहीं माना जाता। समझ की बात है। इसलिए एक झटके में आप भी अपने को चेक कीजिए, क्या आप एक झटके में बने हैं, या अभी भी अपने को समझानी देनी पड़ रही है, खुद खुद को समझानी दे रहे हो, या ईश्वरीय परिवार में एक दूसरे को समझानी दे रहे हो, या बाबा को आपको समझानी देनी पड़ती है। चेक करो, अगर समझानी देनी पड़ती है तो आप बने नहीं हो। यह यात्रा ऐसी है जो एक झटके में होती है, सोच विचार यहां नहीं चलता, समझानी यहां नहीं चलती, समझ कर यह कार्य नहीं किया जाता। यह ना समझी का कार्य है, ना समझी का अर्थ है असोचता, असोचता का कार्य है। यह सोचा कि मरे, नहीं सोचा कि बचे, पार हो गए। चेक करो अपने को, क्या आपने यह श्रेष्ठ सेवा पूरी की है अपने को एक झटके में झटकू बनाने की? चेक करो। क्योंकि जब आप बनेंगे तभी तो आपका प्रसाद होगा। नारियल का प्रसाद तभी तक नहीं बांटा जाता जब तक उसे तोड़ा नहीं जाता। नारियल को तोड़ना माना उसका अस्तित्व समाप्त होना। जब अस्तित्व समाप्त होगा तब उसका प्रसाद बांट दिया जाएगा। जब तक अस्तित्व है प्रसाद कैसे बांट सकते हैं? कुछ मंदिरों में बकरे की बलि चढ़ाते हैं, तो जब तक बलि नहीं चढ़ती प्रसाद नहीं बनता। बिना बलि के प्रसाद कैसे बना सकते बकरे का? समझ की बात है। एक धक से बलि चढ़ना है, ये कार्य ही ऐसा है। विचार आया कि आप गए, वापिस जीवित हो गया वो बकरा, वापिस जुड़ गया वो नारियल। कहीं उसका प्रसाद बट रहा था लेकिन संकल्प आने से वापिस जुड़ गया और प्रसाद बटना बंद हो गया। प्रसाद बटना माना विश्व सेवा होना। प्रसाद तोड़ने वाला चढ़ाने वाला नहीं खाता, सबको बांटता है। और जिस चीज का प्रसाद किया है वो चीज तो कभी खाती ही नहीं उस प्रसाद को। बकरा अपना प्रसाद स्वयं नहीं खाता, उसका प्रसाद दुनिया को मिलता है। नारियल अपना प्रसाद स्वयं नहीं खाता, दुनिया को मिलता है। आपकी बात ही है इसे बाबा कहते हैं। समझ की बात है। अपने को चेक करो। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झट झाटकू बना देना। आप बने होंगे तो बना पाएंगे। आप अपनी रूहानी यात्रा को चेक करो, इस जीवन की। आप सोच समझ कर समर्पित हुए हैं तो आपसे जितनों को ज्ञान जाएगा वह भी बड़े सोच समझ कर समर्पित होंगे, क्योंकि आपका बीज विचित्र है। समझ की बात। बीज विचित्र है, दूसरों को भी विचित्र बना देगा। यह विचित्र का अर्थ है विपरीत। रीत में नहीं लाएगा, विपरीत बना देगा। आप चेक कर, आपका जितना निश्चय है बाप पर उतना ही निश्चय और उससे कम निश्चय जब आप दूसरों को ज्ञान देंगे उनको होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जितना आपका होगा उतना ही निश्चय होगा। फिर आप किसी का कोर्स कराओ, किसी का क्लास कराओ, कहीं प्रदर्शनी कराओ, जितना आपको निश्चय है उतना ही ट्रांसफर होगा आपसे। जितना ड्रामा पर निश्चय है उतना ही दूसरों को ट्रांसफर होगा। जितना चक्र पर निश्चय है उतना ही ट्रांसफर होगा। जितना ब्राह्मण परिवार पर निश्चय है उतना ही ट्रांसफर होगा। आपसे उससे ज्यादा नहीं जा सकता। और जिनका संपूर्ण निश्चय है इन बातों पर, उनके अंदर स्वयं बाप प्रवेश होके ज्ञान देता है, कोर्स कराता है। किसी का भी हो कोर्स, बाप कराता है प्रवेश होकर, क्योंकि निश्चय संपूर्ण है। जहां निश्चय संपूर्ण है वहां बाप हाजिर है। अपनी बुद्धि को चेक करना। आप अपने आप को समझा समझा के ज्ञान में लाए हो या एक झटके में एक धक से ज्ञान में आए हो, चेक करना। अगर समझा समझा कर आपकी यात्रा चल रही है या चलती आई है अब तक, तो अभी एक लेटर लिखो बाबा के नाम से और खुद का समर्पण कर दो। पर एक बात ध्यान में रखना, इस लेटर के बाद, समर्पण के बाद अगर वापस समझाना पड़ा, लेटर तभी लिखना अगर ये आप कर सकते हो। इस लेटर के बाद, समर्पण के बाद, अगर अपने आप को वापस समझाना पड़ा खुद से, परिवार से, मुरली से या बाप से, तो परमानेंट बाहर जाएंगे, परमानेंट जाएंगे। एक चांस है, इसलिए सोच समझ कर लिखना लेटर, सोच समझ कर मर जीवा बनना, अपने आप को समर्पित करना। लेटर लिखने के बाद बाप पर निश्चय, खुद पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय, ये समझाना पड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी, पत्ते गिर जाएंगे। अभी भी चढ़ा सकते हैं आप अपने आप को बलि, अभी भी चढ़ा सकते हैं। जो चढ़ा होगा वही दूसरों को चढ़ा पाएगा, जो खुद चढ़ा नहीं है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, जो खुद चढ़ा नहीं हो दूसरों को क्या चढ़ा पाएगा। समझ की बात है, जिसे बार बार समझानी देनी पड़ती है, बाबा से, परिवार से, मुरली से, ज्ञान से, क्लास से, वो दूसरों को क्या समझाने देंगे, कैसे चढ़ा पाएंगे। समझ है, बाबा कहते हैं अभी तो आप तीर मारते हो बाहर, फिर जिंदा हो जाते हैं, बाहर बाद में देखते, पहले अंदर देखते। अभी तो आप अपने आप को समर्पण कर देते हो, तीर मारकर बलि चढ़ा देते हो, थोड़े समय के बाद जिंदा हो जाते हो, बाप पर नाराज होना शुरू हो जाते हो, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाते हो, परिस्थिति अनुसार, ड्रामा अनुसार। समर्पण हो गए ना, समर्पण हो गए तो बकरे की खाल भी, मांस भी, गर्दन भी, सभी जिसको समर्पण किया उसका है। वापिस खाल क्यों पहनते हो, वापिस जिंदा क्यों हो जाते हो, प्रश्न क्यों पूछते हो, नाराज क्यों हो जाते हो बाप पर, कोई परिस्थिति आए तो, परिवार पर, ड्रामा पर, ऊपर नीचे क्यों हो जाते हो। मरा हुआ कभी ऊपर नीचे नहीं होता, मर गया ना वो, उसको कोई दर्द नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बाप का हो गया ना सब कुछ, तो फर्क कैसे पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है माना बाप को चढ़ा ही नहीं है, बस दिखावा किया और वापस ले लिया, दिखावा किया बस। जैसे नारियल रखा सामने मंदिर में और कहा कि बाहर जाके तोड़ते, नहीं तोड़ा, वो घर लेके गए, घर लेके गए, क्योंकि निश्चय नहीं था उस मंदिर में उतना, सोचा किसी और मंदिर में चढ़ाएंगे नारियल को। बाबा कहते हैं ड्रामा, और क्या कहें। तो तीर तो मारते हैं खुद को समर्पण का, लेकिन वापस जिंदा हो जाते हैं तीर मारकर, स्वयं जिंदा हो जाते हैं। और अगर स्वयं जिंदा हो जाए तो दूसरों को जो तीर मारेंगे उसमें वो भी तो जिंदा हो जाएंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। लेकिन ऐसा समय आना है जो एक सेकेंड में नजर से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। बाबा कहते एक समय ऐसा आएगा जो एक सेकेंड में नजर से निहाल कर देंगे, एक सेकेंड में, फिर सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। अगर आप बाप से एक सेकेंड में नजर से निहाल हो चुके हैं तो दूसरों को कर पाएंगे। जो नजर से निहाल नहीं हुए हैं वो नहीं कर पाएंगे। समझ की बात है, वापिस ध्यान दीजिए। अगर समर्पण किया है तो ही प्रसाद होगा, तो ही विश्व सेवा होगी आपसे, वरना नहीं हो पाएगी। समर्पण मना पूरा समर्पण, सब बाप का, जैसे बाप चलाए जैसे रखे, फिर सुख में रखे या दुख में रखे, मर्जी बाप की। समर्पण किया है ना, शांत रखे या अशांत रखे, मर्जी बाप की। समझ की बात है ये, ये सभी बच्चे नहीं समझ पाएंगे बातें। आपको लगता है बहुत बच्चों को अभी समर्पण किया बाप को तो अभी हमें सुख ही मिलना चाहिए, शांति ही मिलनी चाहिए। किसने कहा? आप अगर अशांत रहो और विश्व की सेवा हो सके तो अशांत रहना अच्छा है। आप अगर दुखी रहो और बाप विश्व सेवा करें आपके द्वारा तो अच्छा है। ये बातें गहन है, गुह्य है, सभी नहीं समझ पाएंगे, सभी के बुद्धि की बातें है नहीं ये। इन बातों तक पहुंचने के लिए पहले अपने आप तक पहुंचना पड़ेगा कि दुख और अशांति से भी बाप कैसे सेवा कराता है। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं आप तीर मारते हो लेकिन जिंदा हो जाते हो। अब एक समय ऐसा आएगा जिस समय नजर से निहाल कर देंगे, फिर सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। तुम अपने में आ जाओ, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहो, फिर विश्व सेवा होगी। तुम अकेले विश्व सेवा नहीं कर सकते, विश्व सेवा करना बाप का काम है। तुम ज्यादा से ज्यादा एक घर की, एक गांव की सेवा कर सकते हो, एक गली मोहल्ले की सेवा कर सकते हो, विश्व सेवा नहीं कर सकते। विश्व सेवा करना संपूर्ण रीति बाप का काम है। जिसने अपनी भ्रुकुटी में बाप को सदा बिठा के रखा है, जो मैं और मेरा बाबा में सदा कंबाइंड है, वही विश्व सेवा कर पाएंगे, बाकियों से नहीं होंगे। बाकी स्व सेवा करे तो मुश्किल है, मुश्किल स्व सेवा होगी, विश्व सेवा छोड़ ही दो। समझ की बात है सभी बच्चों के लिए। अभी मर जीवा भल बनाते हो, झाटकू नहीं बनाते हो। बाबा कहते हैं मर जीवा मना एक दृष्टि में उसे अशरीरी अवस्था का अनुभव कराना। तुम मर जीवा दूसरों पर बाद में जाएंगे। बाबा कहते हैं दूसरों की बाहर की चर्चा करना कोई मतलब की बात नहीं है। बच्चे बने ही नहीं है तो दूसरों की चर्चा क्या करें। तो मर जीवा भल बनते हो तुम, लेकिन वापस कभी कभी जीवित हो जाते हो। मर जीवा कब बनते हो तुम? जब बाप की दृष्टि मिलती है बाबा मिलन में, तुम मर जीवा बनते हो। क्या वैराग्य होता है तुम्हारा जब बाप के साथ होते हो। जब योग में होते हो मर जीवा होते हो, कुछ कुछ अंश में, पर बाकी समय जीवित हो जाते हो। देखिए जो जीवित है यहां पर उसे ही दुख है, देह अभिमान से जो जीवित है उसे यहां निश्चित रूप से दुख है। जो देह अभिमान से मर गया और आत्मा अभिमानी बन चुका, मना मर जीवा, जीव मर गया ना, जो आत्मा अभिमानी बन चुका उसे सदा सुख है, यहां पर सदा शांति है। ये बनने के बाद झाटकू बनना है, बलि चढ़ना है। चढ़ो तो सही, बाबा कहते हैं, फिर बाद में सेवा की बात करेंगे, पहले चढ़ो तो सही। दो बातों की कमी है, वह बातें आ जाए तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हूं। बाबा कहते हैं अपने में आ जा तो तुम्हारे जैसे अपने आप बनते जाएंगे। तुम अपने में नहीं हो, तुम बाप के साथ नहीं हो, तो तुम्हें मिलते भी ऐसे है, तुम्हारे आसपास भी वही रहेंगे जैसे तुम हो। सारा एनर्जी फ्रिक्वेंसी का खेल है, जैसे तुम्हारी ऊर्जा है वैसे ही तुम्हारे आसपास रहेंगे। तुम दूसरों को दोष मत देना, दोषी तुम खुद हो, दूसरों को दोष नहीं देना कभी। दूसरों को दोष देने में बड़ा मजा आता है, पर ध्यान रखना अगर तुम्हारी यह आदत है तो तुम्हारे अब्सेंस में तुम्हें भी कोई दोष दे रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। तुम अगर दूसरों को प्यार देते हो, स्नेह देते हो, तो तुम्हारी अब्सेंस में भी तुम्हें प्यार से याद किया जा रहा है, स्नेह से याद किया जा रहा है, ध्यान रखना। जैसे तुम्हारा रंग वैसे तुम्हारा संग। कभी कहते हैं ना कि संग का रंग चढ़ जाता है, बात सही है, लेकिन जैसा रंग होता है वैसा ही संग मिलता है, और जैसा संग मिलता है वैसे वापस रंग चढ़ता है। इसलिए संग को मना बाहर वालों को, दूसरों को दोष नहीं देना, तुम अपने रंग को दोष देना। तुम्हारी जैसे ऊर्जा होगी वैसे तुम्हारे साथ व्यवहार होगा। तुम्हारी ऊर्जा ही गाली देने लायक है तो तुम्हारे घर परिवार वाले, समाज वाले गाली ही देंगे तुम्हें। तुम्हारी ऊर्जा ही स्नेह देने लायक है तो तुम्हें स्नेह ही मिलेगा। दूसरों को दोष नहीं देना, स्वयं को बदलना। बाप स्व परिवर्तन का ज्ञान दे रहा है, दूसरों की बात ही नहीं है यहां पर। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, और विश्व परिवर्तन बाप का काम है, स्व परिवर्तन तुम्हारा अपना काम है, वो तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए अपने रंग को चेक करो। रंग अगर है समर्पण का, श्रीमत का, निश्चय का, सच्ची दिल का, तो बाप निश्चित मिलेगा, निश्चित बाप मिलेगा। इसमें से एक भी रंग कम है ना, तुम बाप को साकार में पाकर भी नहीं पा सकोगे, तुम भटकते ही रहोगे, खोजते ही रहोगे, क्योंकि रंग कम है। बाप को पाने के लिए चारों रंग चाहिए, चारों रंग चाहिए, श्रीमत, समर्पण, निश्चय बुद्धि, सच्चे दिल, तभी बाप को पा सकते हैं। और अपने जैसा दूसरों को बना सकते हैं, कोशिश कीजिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहिए, मौज में रहिए, और श्रीमत पर चलते रहिए। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति।